संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कल अपन ने मोक्ष अधिकार की चर्चा आरंभ की थी और जिसमें ये कहा था कि बंधनों बंध के ज्ञान से और बंध के विचार से चिंतमन से उनकी डिटेल जानकारी से हमें बंधन से मुक्त नहीं होंगे। उदाहरण दिया था कि जैसे कोई पुरुष बंधन में बंधा हो पड़ा हो तो यदि वो बंधन को नहीं काटे और जानता रहे कि ये बंधन कैसा है कहाँ है कितना मजबूत है तो वो बंधन से मुक्त नहीं होगा। और इसमें आगे की गाथाओं में जो आपने जो पढ़ा है अभी इसलिए पाठ का कराया है कि ध्यान से थोड़ा सुनेंगे तो उसमें ख्याल आ जाएगा। वहां तक की गाथाएं ले गए आपको कि आचार्य देव बता रहे हैं कि तुम्हारे बंधन का नाश कैसे होगा, मैंने बंधनों से मुक्ति कैसे होगी, वहां तक की गाथाओं का पाठ किया है। जितनी गाथाएं आपसे बुलवाई जा रही हैं, हो सकता है अपन वहां तक नहीं पहुंचे, फिर भी आपको ख्याल में आना चाहिए कि यदि कर्म बंधन के विचार से हमें मुक्ति नहीं है तो कैसे है, हमको तो ये जानना है ना, किससे नहीं है, इससे हमें क्या प्रयोजन। देखो आचार्य देव कहते हैं ये बात सही है कि तुम्हें ये जानना है कि किससे हमारी मुक्ति होगी, इसलिए वही बात बतानी चाहिए। लेकिन जब तक इस जगत की मान्यता में जगत में हम भी शामिल हैं और कारणों से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी ऐसी रहेगी, तब तक जो हम बताएंगे कि नहीं इससे होगी तो वो वहां खाली जगह नहीं है ना दिमाग में, तो वो ये नई बात आगे बैठेगी नहीं। आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और हम वहां गए, हमने कहा नमस्ते किया और आपने कहा आइए आइए पंडित जी बैठिए, हम क्या करेंगे बोलिए, कोई दूसरी कुर्सी नहीं है, आप एक कुर्सी पे जमे हुए हैं और हमसे कह रहे हैं कि आइए आइए बैठिए, और हमारे पास एक ही उपाय है कि हम जमीन पे बैठ जाएं पालथी मार के, क्यों नहीं तो खड़े ही रहेंगे ना। यदि जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं इस पोजीशन में नहीं है तो खड़े ही रहेंगे ना, और जब बहुत आग्रह वो करेंगे कि नहीं बैठते बराजिए ना बैठते क्यों नहीं है, तो हम यही कहेंगे कहां बैठे ये जगह बताओ ना। ऐसे ही अंदर में एक मान्यता बैठी हुई है, उस पर कुर्सी पे जमी हुई है, कौन सी पे, कि मोक्ष प्राप्ति की में, और उसमें बहुत हो सकती है व्रत से उपवास से दान से तीर्थ यात्रा से और उन बहुत बहुत चीजों से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता अंदर में जमी हुई है। तो जब वो मान्यता से एक कुर्सी खाली नहीं होगी तब तक हम जो नई बात बताएंगे वो अंदर उसे बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम पहले थोड़ा सा ये बताते हैं कि किस किस से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हम तो दो तीन गाथाओं में ही घबरा गए, आचार्य देव कहते हैं कि हमने तो बहुत बातें छोड़ दी, तुमसे ये नहीं कहा कि व्रत से उपवास से हैं क्रियाकांड से दान से, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम समय सार के पढ़ते पढ़ते मोक्ष अधिकार तक आ गए हो तो उनसे मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो। इसलिए हमने इतनी लंबी कहानी नहीं कही, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अत्यंत नजदीक का है वह जिसे छोड़कर सीधे आत्मा में जाना है ना, जब हमें आत्मानुभूति करनी होती है तो पहले होती है देशना लब्धि और फिर प्रायोगिक के बाद करण आ जाती है, दो की तो हम बातें नहीं करते हैं, सर्वसम लब्धि और विशुद्धि लब्धि की, क्योंकि यदि तुम उन बेलब्धियां नहीं होती तो तुम यहां आते ही नहीं, है ना। विशुद्धि लब्धि नहीं होती तो यहां आते ही नहीं, और सयोगसम लब्धि नहीं होती तो तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं। वो दो की तो हम बात ही नहीं करते हैं। अब तीसरी देशना लब्धि, अब हमें देशना लब्धि मिली, अब हम स्वाध्याय को जन्म तीनों से हो सकती है, देव से, शास्त्र से, गुरु से। इसको मैं लंबाऊंगा नहीं, भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि खर रही हो तो उससे बढ़िया महाभाग्य तो हमारा किसी का कोई हो ही नहीं सकता है, वो देशना मिल जाए तो। और कोई सदगुरु मिल जाए और उनके द्वारा वो हमें तत्व ज्ञान की देशना मिल जाए तो भी महाभाग्यशाली हैं। लेकिन ये दोनों नहीं मिले तो जनवाणी के स्वाध्याय से भी देशना लब्धि की प्राप्ति हो सकती है, इसकी चर्चा नियमसार में की है। और मेरे लिए तो बहुत ताजी ताजी बात है, क्योंकि मैं कल परसों रात को ही नियमसार की टीका और नियमसार अनुशीलन का भाग तीसरा समाप्त करके आया हूं, प्रेस में दे के आया हूं, और कोशिश है कि सम्मेलन शिखर में कुछ प्रतियां तो कम से कम पहुंच जाए। तो उसमें ये बात है, मान लो मेरे कहने से, कि देव, शास्त्र, गुरु तीनों में से कोई भी निमित्त हो सकता है, और इसलिए ये बात अपन को पंचम काल के जीवों को समझना बहुत जरूरी है कि यहां देव का तो स्पष्ट रूप से वियोग है, वे तो हैं ही नहीं, और गुरु भी कहीं हो सकते हैं कोई हो, लेकिन हमें अपने सामने आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आप समझे ना। इसलिए अब हम कैसे, अब हमारे एक ही शरण रह गया ना, शास्त्र ही शरण, और उसके लिए हम ऐसा कह दें कि उससे हो नहीं सकता तो काम कर दू, तो हमारा मनुष्य मोहन में ही जाएगा ना, ऐसा अर्थ हो गया ना फिर तो रास्ता खुला है, हैं? तो ये तीन की बात आई। तो वो कहते हैं कि अंत समय में एक कई स्वाध्याय में ही तो होगा ना अंतिम क्रियाकांड, तो देश नलब्धि स्वाध्याय वाली तो है, या तो किसी से तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा होगा, या गुरु के उपदेश सुन रहा होगा, ज्ञानी धर्मात्मा से सुन रहा होगा, गुरुदेव जी के टेप सुन रहा होगा, अथवा शास्त्र पढ़ रहा होगा। तो उनमें से वो अत्यंत नजदीक का जो है वो आत्मा का निरूपण करने वाले शास्त्र हैं, जो शुद्ध आत्मा का वर्णन करें, कर्म का निरूपण करने वाले शास्त्र नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और उसमें ही तुम लगे रहो और समझोगे हमें देशना लब्धि हो जाएगी और हम कर्म लब्धि में चले जाएंगे, तो इस धोखे में मत रहना। तो ये बात उन्होंने क्यों कही है ना, अभय जी कहा है, है ना, अपने पढ़ा ना न्याय शास्त्र में, प्रत्यासत्य प्रधानम बलियम, है ना। माने एक नियम ऐसा होता है कि हम कोई बात कर रहे हैं तो जो आगे की बात आएगी, या तो वो जो प्रत्यासत्य माने नजदीक की कोई बात है उससे आएगी, या फिर मेन टॉपिक से आएगी। देखो सर्वार सिद्धि में ऐसा प्रश्न किया गया कि तुम बीच में ये बात कर रहे थे और फिर एकदम होने कहां पहुंच गए, तो उन्होंने कहा मूल तो मुख्य मारक की बात ही है ना, तो प्रत्याशक्ति से प्रधान बलवान होता है, देखा ना। तो यहां कहते हैं अत्यंत नजदीक में बंध अधिकार की बात चल रही थी, तो कोई ये बंध की डिटेल में जा नहीं रहे थे, कौन, आचार्य देव। तो किसी के मन में ये हो जाए तो बंध के डिटेल में क्यों नहीं जाते हैं, लगो रहो ना लेन से, पूरा होमवर्क सार पढ़ लो और फिर जाओ तो सठखंडा कम पढ़ लो। तब उनने ये कहा कि इसके चिंतमन से और इसके ज्ञान से ये मुक्ति नहीं होगी, अत्यंत प्रत्याशक्ति की बात है, इसलिए इसकी बात कही और की बात नहीं कही। इसलिए कोई आदमी ये समझ ले कि और चीजों से हो जाएगा, तरुणानियों के स्वाध्याय से किसी से, ये बात नहीं है। यदि इसके इससे कोई ज्यादा नजदीक है तो वो सिर्फ अध्यात्म शास्त्र हैं, शुद्धात्मा की सीधी बात करने वाले हैं, बस और कोई नहीं है। अंत में तो उससे भी कहेंगे कि सविकल्प ज्ञान से कुछ नहीं होगा, निर्विकल्प में जाना पड़ेगा। अब ये भी उसके पहले नजदीक करुणानि योग का स्थान है। मैं कहना चाहता हूं कि करुणानि योग की महिमा है इसमें, करुणानि योग का अपमान नहीं है, क्योंकि बाकी की चीजों को तो काफी पीछे डाल दिया ना, वो अनुभूति तो हो ही नहीं सकते, शुद्धोपयोग तो हो ही नहीं सकते, तो उसके कोई नजदीकी तो रहेंगे ना। इसलिए उन्होंने ये कहा कि बहुत यदि यदि इसी बंधन की बात ही सोचते रहते हो तो क्यों सोचते हो, यहां समय सार तो शुरू यहां से होता है। बंध कहा ए यत्ते तेन विसंवादनी होई, क्या क्या भाई साहब, आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है उसकी बात तो चौधरी गाथा में करेंगे, फिर बंधाधिकार में करेंगे, लेकिन पहले ही कहते हैं कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात सुनाऊंगा, और उसमें ये आत्मा तो कर्मों से बंधा है ना, कि ये बंध की कहानी ही झगड़ा पैदा करती है। बस ये जवाब नहीं, बंधा है कि नहीं बंधा है, कि तुम बनी बात ही कहां से लाए, अब सगुन की बात क्यों करते हो। ये बंध की जो कथा है वो भी भगवान आत्मा के एकत्व में विघ्न करने वाली है। ये जैन दर्शन भेद का विज्ञान है और समयसार शास्त्र भेद विज्ञान का शास्त्र है। देखो इसमें जीवाजीवाधिकार में सारी दुनिया को हमने दो भागों में बांटा, दुधा करते आएगा ना भी, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे, आएगा ना। तो प्रज्ञा रूपी छेनी से हमें पर से विभक्त करना है, फिर बाद में ग्रहण करने की बात आएगी। तो उनने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की थी, एकत्व माने अपने में अखंड और विभक्त माने पर से जुदा। हमारी क्या आदत है कि अपने में जो अखंड है उनमें तो हम भेद डालते हैं, और जो पर से जुदे हैं उनके साथ एकत्व स्थापित करते हैं, उल्टी बात हो गई ना। तो पर के साथ एकत्व स्थापित करने वाला सद्भुज व्यवहार ने, और निज में भेद डालने वाला सद्भुज व्यवहार ने, पहले ने दोनों ही व्यवहार ने की छुट्टी कर दी, हमें एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझना है। तो कहते हैं भैया देखो, हमारा पर से एकत्व है और इसको हमें भिन्न जानना है, तो उसका अर्थ क्या। कहते देखो चार बातें हैं, ध्यान से सुन लेना, बहुत संक्षेप में कहूंगा आगे, कि चार बातें हैं एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अध्यात्म कहता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है, अध्यात्म में दोनों का एक ही अर्थ होता है। हम दुनिया में भेद डालें, ये रूमाल तो मेरा है क्यों, और आत्मा मैं हूं, क्योंकि तुमने इसे मेरा कहा तो हम तो यही मानेंगे कि तुमने ये माना है कि ये मैं हूं। एकत्व और ममत्व, समझेंगे ना, इन दोनों को वे एकत्व हो भगवान वाली बात है ना, वो इसमें लेते हैं। तो उनने 66 गाथाओं में शुरू शुरू में जीवाजीवाधिकार में सिर्फ इतना समझाया, कितना, कि ये जो पर पदार्थ है और पर पदार्थ से लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं, और जिनके लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति हो, देश और गुण भेद, पर्याय भेद, देश और प्रदेश भेद, वो सब मैं नहीं हूं और वे मेरे भी नहीं है। बस इतनी सी बात मैं अरसर कहता है लगा दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फिर अरसर कहता हूं कि चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस पर्याप्त है। कितने, क्या भाई, बोलो प्रदीप भाई, कितनी आने, कि हम मैं ये मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है। कौन कौन? पर पदार्थ, उनके उत्पन्न लक्ष्य उत्पन्न होने वाले मूलराग देश के परिणाम, और जिनके लक्ष्य से विकल्प पैदा होता है, ऐसे प्रदेश भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, ये सब शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, न्याय की भाषा में, ये पर्यायार्थिक न्याय के विषय हैं, इसलिए इनकी नाम पर्याय संज्ञा है। पर्याय से जुड़े, परो पर्याय से जुड़े, भगवान आत्मा में ये सब कोई नहीं है। ये आत्मा इन रूप नहीं है और इनका स्वामी नहीं है, और ये आत्मा के स्वामी नहीं है। तो इतनी बात उन्होंने जीवा जीवाधिकार में समझाई। फिर इनका कर्ता और भोक्ता भी आत्मा नहीं है, बस इतनी सी बात कर्ता कर्म अधिकार में बताई। 144 गाथा पूरी हो गई। क्यों याद रहेगा? बहुत सरल कर दिया है। एक गाथा से लेके 144वीं गाथा तक क्या बताया है कि ये जो चीजें गिनाई मैंने अभी, ये मैं नहीं हूं, मैं इनका स्वामी नहीं हूं, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, और मैं इनका भोक्ता नहीं हूं। बस इतनी सी बात समझाई। तब उन्होंने कहा ये सब है, तो भाई देखो ये पर पदार्थ कुछ नहीं, अपन नहीं है, ये बात ठीक है आपने कह दी, वो तो हमने मान ली, लेकिन देखो पर में भी बहुत कुछ आदमी अच्छे होते हैं, ऐसे बोलते नहीं बस भाई मुसलमान मुसलमान तो मुसलमान है, ठीक नहीं ठीक नहीं। जो लोग कहता देखो भैया अच्छे आदमी का ठेका हिंदुओं में ही जैनियों में ही नहीं है, मुसलमानों में भी कई आदमी बहुत अच्छे होते हैं और नालायक भी होते हैं, और अपने जैनियों में भी, घबराना नहीं, क्यों सभी तो अच्छे नहीं होते ना, नहीं हो सकते ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा कोई बोला कि भैया कुछ अच्छे और कुछ बुरे ऐसा तो मानो, तो उन्हें पुण्य पाप अधिकार में ये बताया कि भैया जो अपना नहीं है उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या प्रयोजन है, जिनसे अपने चार प्रकार का संबंध नहीं है पर कभी होने वाला नहीं है, जिनके साथ हमारे बीच में वज्र की दीवार है, क्यों आप समझ रहे हैं ना, के साहब वो तो ठीक है कि इस लड़की से शादी नहीं हो सकती है, लेकिन है तो सुंदर है, कि जब हो नहीं सकती है, नक्की हो गया कि उसकी हो गई, तो फिर वो सुंदर है कि कुरूप है, इससे तुझे क्या प्रयोजन है मुझे बता, क्यों किसी लड़के को लड़का लड़की पे रींझ गया और उसने पूछा किसी से, तो उसने बताया कि इसकी परसों ही फेरे पड़े हैं, तो उसका दिमाग हट जाना चाहिए ना कि अब कुछ संभव नहीं है, फिर भी क्या है तो खूबसूरत, अच्छा बताओ तो किनकी लड़की है, कोशिश करके देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, सीधा जेल में जाएगा, उसे बंधन होना चाहिए ना कि एक लोक की व्यवस्था को खंडित करने वाला व्यक्ति है, इसके परिणाम बहुत खोटे हैं, ये खोटी निगाह मानोगे कि नहीं मानोगे आप। तो ऐसे ही जब हमारे हमने वज्र की दीवार खड़ी कर दी परद्रव्यों में और कोई संबंध हो ही नहीं सकता, और फिर एक किसी तरीके का उनमें अच्छे बुरे का भेद करता है, तो इसकी निगाह खोटी है, इसे जेल में डालो। तो कहते हैं पर पदार्थों में और भावों में, पदार्थों में भी और भावों में भी अच्छे बुरे का भेद करना ये समझदारी का काम नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात 20 गाथाओं में पुण्य पाप अधिकार में समझाई। अब अपनी 100 कितनी हो गई, 64 गाथाएं निमट गई, इससे ज्यादा नहीं असल कुछ। ये बात में हमारा माता यदि क्लियर है तो बिल्कुल निश्चिंता मत करना कि तुम समय सार पढ़ने की प्रेरणा देने आए हो कि नहीं पढ़ने की प्रेरणा देने आए हो। क्यों? अरे तुम्हें सहज सरल मार्ग बता रहे हैं और तुम हम पे आरोप लगाते हो। अब देखिए फिर आया आश्रव अधिकार, पुण्य पाप की बात, उसने क्या बताया, कि देखो भैया ये पुण्य पाप है ना, ये आत्मा नहीं है, ये आश्रव के भेद हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। और आश्रव तो तुम जानते ही है, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बनते तेने नेरे बेरे, ये आश्रव बहुत घना दुख देने वाले हैं। उनने ऐसा भेद नहीं किया कि पुण्याश्रव के पापाश्रव है ना, लिखा ना आश्रव दुख कार घनेरे पुण्य पाप अधिकार के तत्काल बाद। मैंने कहा दोनों आश्रव हैं समझ लो, हैं? अब इनमें भेद करना ये समझदारी का काम नहीं है, चाहे ब्राह्मणी के यहां पला हो चाहे शूद्रा के यहां पला हो, लेकिन ये दोनों भाई जुड़वा हैं और शूद्रा के उधर से निकले हैं तो शूद्र ही हैं। बस आश्रव मिल गया। और समर अधिकार तो भेद विज्ञान का ही अधिकार, भेद विज्ञान का नहीं, भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। फिर भेद विज्ञान की प्रशंसा की जितनी गाथाएं हैं, जब उसके कलशों का पाठ हम करते हैं ना तो एक ही बात आती शुरू से अंत तक। कई दफे मैंने बहुत कराया लोगों को, क्या ओ बस भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केतना तस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकल केतना, जितने जीव आज तक मोक्ष में गए हैं वो सब भेद विज्ञान से गए हैं, जितने संसार में रखड़ रहे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से। मैं भेद विज्ञान का अभिनंदन किया है, कभी सोचा भी नहीं हो, हम तो समझते किसी व्यक्तियों का अभिनंदन समारोह होता है। लेकिन समय सार में अमृतचंद्र ने लिखा है, हेडिंग पढ़ना, भेद विज्ञान की पहली जो गाथाएं शुरू होती है ना कौन सी 181 82 और 83, उसके ऊपर लिखा है अब भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, ऐसा लिखा है। भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है और पूरे भेद विज्ञान का अभिनंदन किया है। 64 तो अपनी पुण्य पाप अधिकार तक निपट गई थी, अब ये 81 से शुरू हुई तो आश्रव अधिकार कहां तक चला, 80 तक। क्या नाएगा बोलिए, अब कि इन्होंने भेद विज्ञान का अभिनंदन किया, अब उसके बाद में क्या आता है, निर्जराधिकार। तो निर्जराधिकार में कुछ आचार्य को कहने को बचा ही नहीं था, ये तो उनकी स्टाइल है नहीं कि निर्जराधिकार कितने प्रकार की होती है बताने लग जाए, 57 प्रकार की होती है उसके भेद गिनाने लग जाए, क्यों है ना। तो वहां से शुरू करी कि सम्यक दृष्टि के कर्म भी भोग भी निर्जरा के हेतु है। अरे क्या कह रहे, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है और अज्ञानी को वही कर्म फल देतु है, यह अचरज की बात ये नहीं आवई पूछे कोई शिष्य गुरु समझाए। वो यही समझाने में बैठ गया और न्याय से युक्ति से उन्होंने बराबर इस बात को सिद्ध कर दिया कि ज्ञानी जो भेद विज्ञान वाला है उसके तो कुछ भी करे वो निर्जरा। मैंने थोड़ा आइडिया कल दिया था ना कि हम शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है तो मानते ही हैं, लेकिन शुद्ध परिणति के मामले में जरा हम चुप रहते हैं। लेकिन लिखी है ना कि सम्य दृष्टि श्रावक वृता अनंत वियोजक, ये सूत्र है तत्व सूत्र का, गोमट सार में गाथा भी ऐसी है, ये 11 स्थान हैं जिनकी असंख्य गुणी निजरा होती है। अब कुछ ओवर होगी, थोड़ी कम ज्यादा होती होगी तो कर्णानियों वालों से समझ लेना, वो झगड़े में नहीं पड़ना। निजरा होती है, मुझे तो सिर्फ इतना करना है, क्यों समय दृष्टि के निजरा होती है तो किस काल में होती है, कल मैंने थोड़ा आइडिया दिया था ना, इतने प्रकृतियों का बंध रुक जाता है 41 का, तो एक ये बताया था ना अकेले सामायिक करते वक्त ही नहीं रुकता है, पूजा करते वक्त भी रुक जाता है, भोजन करते वक्त भी रुक जाता है और लड़ते वक्त भी रुक जाता है और शत्रुओं की गर्दन पर तलवार चलाते वक्त भी रुका रहता है। बस ये बताना चाहते हैं कि भाई जो असंख्य गुणी जो भी लिखा ना असंख्य गुण निर्जरा, वो जो निर्जरा होती है वो चौथे गुण स्थान में हरेक अवस्था में होती है। इसे क्या सिद्ध हुआ कि बाहर की क्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो अंदर में उपयोग भी शुद्ध नहीं है, तो वो जो शुद्ध परिणति है उसी से तो हो रही। अब पांचवें गुण स्थान वाले की लगा लेना, तो छठवें की लगा लेना, ठीक है ना दिनेश भाई? अब ये करुणा योग में एक चौथे में ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? चालू है, कोई बात नहीं है, पांचवें से हो जाएगी। टोडर मल जी ने उसमें ऐसा प्रश्न किया है कि तुमने ये 11 स्थान बताए हैं तो तुम बता रहे हो कि चौथे में भी होती है, तो किससे ज्यादा? तो उन्होंने लिखा ना भद्र मिथ्या दृष्टि से, तो निर्जरा तो होती, इतना तो सिद्ध हो गया ना, है ना? क्या टोडर मल जी ने लिखा है उसमें? अब मेरे कहने का पांचवें पर ध्यान ले लें। अब पांचवें गुण स्थान वाला एक जीव है, वो भी गृहस्थ है ना, बाल बच्चों वाला है ना, उस पर कोई आक्रमण करेगा तो वो क्या करेगा? विरोधी हिंसा होगी कि नहीं होगी उससे? तो मेरा उदाहरण तो घटित हो रहा है ना उस पर भी, कि जहां असंख्य गुण निर्जरा हो रही है और वहां पुण्य भाव भी है और पाप भाव भी है और वितराग भाव भी है और तीनों के काल में हो रही, इससे सिद्ध हो गया ना वो बात कौन सी, कि परिणति से भी निर्जरा होती है, अकेले उपयोग ही निर्जरा का कारण नहीं है। और पांच में से तो फिर असंख्य गुणी होगी ना, तो होती रहेगी ना, भले ही अशुभ भाव में रहे चाहे शुभ भाव में रहे। तो ये समझा रहा है पूरे निर्जराधिकार में कि तुम घबराओ मत, यदि तुम सही लाइन पर हो, तुम्हारा मिथ्यात्व तो चला गया है, तो अब मोक्ष तो तुम्हारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। क्यों चला है दौड़ा? वो दौड़ रहा है, तुम्हें नहीं दौड़ना है। क्यों? क्योंकि निर्जरा जितनी हो रही निरंतर निरंतर, उसका मतलब क्या है? मोक्ष की तरफ हम जो दौड़ रहे हैं ना, मोक्ष हमारे नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए? अब कितने कर्म होंगे हैं? आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण मिट जाने का है, क्यों आता क्या नहीं आता? ताकत थोड़ी रोष घनेरा, यह लक्षण पिट जाने का। शक्ति तो कम है और गुस्सा बहुत आता है, हरे से गालियां बकने लगेगा तो क्या होगा बोलिए? शक्ति थोड़ी रोष क्रोध घनेरा, यह लक्षण पिट जाने का, और आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण मिट जाने का। तो क्या करें कमल जी, थोड़ा खर्च कम करें? अरे ये नहीं कह रहा हूं, ये कर्मों के खर्च की बात है, तुम्हारे खर्च पैसा के खर्च की बात नहीं है। अब आ गया तो पांचवें गुण स्थान में, तो कर्मों की आमद तो थोड़ी हो गई, क्योंकि इतनी प्रकृतियों की छुट्टी हो गई, खोटी खोटी प्रकृतियों की, और ये खर्च घनेरा, असंख्य गुणी निर्जरा हो रही, तो ये लक्षण काय का है? मिट जाने किसका? संसार का, कर्मों का, ये मिट जाने का लक्षण है ना। अब तुम्हें काय की जल्दी है? अब तुम्हें मोक्ष जाने की जल्दी क्यों हो रही है? धैर्य रखो ना, केवल ही भगवान भी इतना धैर्य तो रखते हैं। चार घातिया कर्म चले गए, अब अघातिया हैं और उन्हें अनंत वीर प्रकट हो गया, और अतुल्य बल के धनी तो वे पहले से ही थे ना। अब फटाफट उनका नाश करके मोक्ष में चले जा, कैसा आप भी नहीं जा सकते? क्यों नहीं कहता है नहीं जा सकते? आनंद वीर के धनी है, काय का आनंद वीर? इनकी मैं सुनो क्या नहीं जा सकते, मेरी सुनो, उन्हें जल्दी ही नहीं है जाने की, उन्हें विकल्प ही नहीं है, उन्हें भाव ही नहीं है, जब जाएंगे तब चले जाए। आखिरकार चार घातिया कर्म मौजूद हैं क्यों, और फिर भी वो स्वकाल को स्वीकार करते हैं कि वो स्वकाल में मोक्ष होगा, वो अनंत ग्रंथ पर्याय को मानते मान रहे हैं। ये जो हमारी आकुलता है जल्दी जल्दी की, ये तो क्रम पद्धति तोड़ने का भाव है भाई साहब, फिर वो हरंत भगवान का विरोध हो जाएगा खड़ा। तुझे तेरा भगवान आत्मा मिल गया ना, अब तुझे क्या चाहिए कि वो मोक्ष मोक्ष क्या होता रहेगा, समझ गए ना। थोड़ा आगे पीछे नहीं, वो तो सोकाल में ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, तो कोई आकुलता नहीं, बिल्कुल शांति, कोई विकल्प नहीं, समझे ना। ये फिर उन्होंने बंधाधिकार शुरू किया था है? तो बंधाधिकार बंध कैसे मिटे, यही बात तो है ना। तो पहले उनने क्या समझाया था, बंध किन किन से नहीं होता, उनकी दृष्टा लेंगे। अब मोक्ष किन से नहीं होता, तुमको क्यों ऐतराज हो रहा है भाई। इनने बताई ना बेचारों ने तीन गाथाएं कि इनसे मोक्ष नहीं होगा, तो हमें विकल्प खड़ा हो गया। अरे मोक्ष कैसे होगा ये बताओ ना। लेकिन बंध अधिकार में शुरू में यही बताया ना, कारमाण बर्ग ना सोच लगे में न बंधे जीव, बंधे ना ही मन बच्चे काय के योग सो, चेतन्य अचेतन्य की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रिय के भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मेलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। तो ये आया ना, ये तो एक लाइन में कही कि काय से बंधे, बाकी इनसे नहीं बंधे से शुरू किया है? कि किन किन से नहीं बंधे, किन किन से नहीं बंधे। आप जानते हैं सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा किसको होती है, कौन से गुणस्थान में होती है? अरहंत भगवान को आप सोच भी नहीं सकते हैं द्रव्य हिंसा। ऐसा है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक औदारिक शरीर रहता है। औदारिक समझते हैं शरीर अपना जैसा। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो शरीर परम औदारिक हो जाता है। तो औदारिक शरीर में अनंत जीव होते हैं, निमोजिया भी हो सकते हैं, कदाचित तृष भी हो सकते हैं, और परमोदारिक में एक भी जीव नहीं होता। तो वो औदारिक से परमोदारिक होता है तो वो सब जीव का मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, उनसे आत्मा मुक्त हो जाता है। समझे ना, ये सब शास्त्र की बात है, ये सब करुणा नियोग में लिखा है। इससे मतलब अपन को हिंसा से नहीं बचना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आकुलता नहीं करना चाहिए। ये आचार्य कहते हैं कोई किसी बात की आकुलता नहीं करना चाहिए, शांत भाव से। अभी ये अपन आ गए यहां पर मोक्ष अधिकार, उनने बंध अधिकार में ये बात बताई, तो उन्होंने कहा तुम बताओ मुझे काय से छूटेंगे, तो उन्होंने कहा इनसे नहीं छूटोगी। ये दो तीन चार गाथाएं इस बात की है क्या, क्योंकि हम जहां जहां उलझे हैं वहां वहां से उन्हें हमें हटाना है। तो वास्तव में हम सब जगह से तो क्रियाकांड से तो हटे आए हम, क्योंकि वहां बोल के आए थे क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान कांड से सुलभ है सहज आत्मा राम। अब हमारे लिए समझोगे ये बंद की प्रक्रिया अथवा ऐसे इनमें ही हमारा उपयोग उलझा रहे, तो वो कहते हैं भाई इनसे भी अपने उपयोग को हटाओ, बस इतनी सी बात है। उनको ये कहना था इसलिए उन्होंने ये बात कही। इन गाथाओं को पढ़े भैया, इन गाथाओं का पद्य अनुवाद है ना तुम्हारे पास, अब ध्यान से सुनना। इतनी बात मैंने कह दी तो डेढ़ व्याख्यान कर दिया, अब उसके बाद सुनना। कोई पुरुष छह गाथाएं पढ़ना, कोई
पुरुष चिर काल से आवत हो कर मंद के तीर मंद स्वभाव एवं काय को हो जानता, किंतु यदि भवन का भेद न कर छोटे नहीं तो पुरुष चिरकाल तक इस मुक्ति को पाता नहीं।
गाथाएं जो 6 गाथाएं हमारी समाज में बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। जो कैसे कर लेती हैं मैं थोड़ा अंदाजा आपको बताता हूं। ये सब मैं आपको मैंने किताबें 50 लाके दी हैं, आप अपने घर ले जाएं, शांति से उन्हें पढ़ें। पर एक ही शर्त है कि जब यहां आए मेरा प्रवचन सुनने तो लेके आए, और मैं फिर लास्ट में आपको ही दे जाने वाला हूं। लास्ट में नहीं मांगूंगा आपसे, लेकिन अभी रहे और पढ़ें तो उसमें सब बातें लिखी हैं। और मैं तो घर पे पढ़ के ही आता हूं, वैसे लिखी भी मैं ही नहीं है, तो मुझे यहां मैं पढ़ के नहीं सुना सकता आपको, क्योंकि उसमें अपना टाइम जाता है। देखो क्या झगड़ा खड़ा होता है कि ये गाथाएं लेकर जो कांजी स्वामी के विरोधी हैं वो लाला की हमें बताते हैं। क्लियर लिखा ना कि तुम्हारी ये अकेले पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तो तुम सुबह शाम तक स्वाध्याय 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 बंदरों को काटना पड़ेगा भाई साहब। क्या हमके जहां साहब आप सही बात कह रहे, तो फिर आ जाओ हमारी पार्टी में काटने के लिए, मान दीक्षा ले लो। फिर वो बंदरों को काटने का उपाय ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं व्रत करो उपवास करो दीक्षा लो तीर्थ यात्रा करो इनसे कर्म कटेंगे। वो नेगेटिव पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि इनसे नहीं कटेंगे तो तुम्हारे स्वाध्याय से नहीं कटेंगे। कल मैंने बताया चरणान योग प्रथमान योग करुणान योग सबका सबके स्वाध्याय से, और हमने एक नया क्रियाकांड विकसित कर लिया है। उनका वो क्रियाकांड उस टाइप का है पूजा पाठ शील संयम का क्यों, और हमने ये स्वाध्याय वाला क्रियाकांड विकसित कर लिया है। और कुछ लोग फिर लौट के उसी क्रियाकांड की तरफ जाने लग गए हैं, 8-8 घंटे तक विधान पूजने। अरे तो ये कमर के दर्द वाले कैसे बैठ पाते होंगे, मुझे तो 1 घंटा भारी पड़ता है। क्यों हम उसी तरह भागने लग गए कि भैया उसमें इंद्र बन जाते हैं, इसमें तुम्हें इंद्र बन तो बनाते नहीं हो कुछ, उसमें कुछ हमारी भी कीमत होती है। जो पैसा फेंकता है ना वो बन जाता है, जो नहीं फेंकता वो नहीं बनता है। हम पैसे वाले की भी थोड़ी इज्जत होती है ना। अभी तुम्हारे इसमें धूल मिट्टी गुड्डे वाला इसमें हमें क्या रखा, ये तो सभी धान बारी पसेरी है, यहां तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई साहब उस क्रियाकांड की तरफ जाने की नहीं है। कोई कहते ध्यान करो, अकेले ज्ञान ज्ञान करने से क्या होगा, है ना। कोई ऐसी 25 लाइनें फूट पड़ी अपने मुमुक्षुओं में भी। अभी मैं कोई बाहर वालों की नहीं कर रहा हूं, ये कल मैंने कहा था ना थोड़ा कि आप मैंने ब्रह्मचारी कहा तो ये मत समझना मैं तुमसे कह रहा हूं, इनकी तो मैं बाद में कहूंगा। तो भाई बाद में क्या कहने वाले क्या कहने वाले, अरे कुछ नहीं है भैया, तुम अपने माथे पे नहीं ले लो। एक विधवा महिला थी तो उसको तकलीफ हुई होगी, तो एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जाए। ये पंच होते हैं दाढ़ी रखते थे पहले बड़ी बड़ी, तो कह रही पंचों की दाढ़ी में आग लग जा। ये गाली है एक तरह से बुंदेलखंड में, जब महिलाएं बहुत गुस्से में होती हैं तब बोलती हैं, किसी के भी हो। आज आपको भी गाली देने हो लेकिन तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए, और हमारी दाढ़ी है ही नहीं, क्या लगेगी। तो एक पंच आया, क्या बोल रही है, फिर दोबारा बोल के बताना कि तेरे को छोड़ के मुझे सौंप दे के ब्रह्मचारियों से अलग कुछ नहीं कहना है, लेकिन सामने बैठे हैं इसलिए मैंने कह दी तेरे को छोड़ के। जो भी मैंने वृत्ति और प्रवृत्ति बताई जो अच्छी नहीं है वो जिसमें हो वो समझ लेना, और जिसमें नहीं हो वो नहीं समझना। मेरा मतलब यह है सचमुच मैंने किसी के व्यक्तिगत लक्ष्य से बात नहीं कही। गुरुदेव जी की आज्ञा अपन को यही है, अपन तो मूल तत्व ज्ञान की बात पे रहो, तत्व ज्ञान की बात उसके बिना स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए थोड़ा बहुत कभी उदाहरण के रूप में कहना पड़ता है, लेकिन किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। हाँ। तो वो जो वे क्या कहते हैं स्वाध्याय के विरुद्ध जो लोग हैं वे जान ठोक के एक आसान लेके आ जाते हैं कि देखो क्लियर लिखा, तुम्हारे पढ़ने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे चिंतन चिंतन से कुछ नहीं होगा, पर तुम पढ़ते हो बैठते हो विचार के तब चर्चा करते हो इसे कुछ नहीं होगा। तो हम भी कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वे कहते हैं काय से होगा, और हम जो कहते हैं काय से होगा उसमें मतभेद है ना। तो इसमें क्या कहने वाले हैं, जो अंतिम गाथा की जो छह पढ़वाई उस अंतिम गाथा की पंक्ति में देखो ये बात है, और आगे तो बहुत विस्तार से है, छठवीं एक गाथा है ना, छठवीं गाथा है ना,
जो जात कर निज भाव निज में और बंधक भाव को विरत हो, जो बंध से देव कर मुक्त हो।
पर ये बंध स्वभाव को जाने और जीव के स्वभाव जाने, वो बंध से विरक्त हो पर बेजीव मुक्ति पाएंगे। और अब हम तो बात ये कह रहे इस पे लाना चाहते हैं, वो निरंतर उसके उसमें कर्म की प्रकृतियां गिन रहा था वहां से हटाकर हम इस पे लाना चाहते हैं, और वो लौट के उस क्रियाकांड पर ले जाना चाहता है। क्योंकि उसमें लिखा ना उदाहरण में छेदने से मुक्ति हो, तो तुम कर्म को छेद तो नहीं रहे हो पर कर्म की बातें कर रहे हो पूरी। अब वे क्या समझ रहे, हम छेद रहे क्या, जो भी उन्होंने देश धारण कर लिया है और जो भी वृत्तोपास आदि करते हैं, तो वो कहते हैं हम कर्म काट रहे, मानते हैं कर्म काट रहे माने छेद रहे, वो तो उन्होंने पहले से नक्की कर लिया है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके बिना नहीं होगा। लेकिन भाई यहां तो ये कह रहे हैं कि तुमने भेद विज्ञान किया ना, तो बंध से विरक्त होके उससे भिन्न जो आत्मा है और उसमें अपने को अपनापन करके उसमें स्थिर हो, स्थिर हो माने अपनापन करो, ये मैं हूं ऐसा जानो, ये मैं हूं ऐसा मानो, और उसमें ही उपयोग को स्थिर करने की कोशिश करो। हम इससे होगा बंद का छेद, इससे होगा वो इसके अगली गाथा में भी है। और देखो प्रज्ञा छेदने वाली कलेश आ गया ना इसके पीछे, 181 में कल तुमने पढ़ा था ना अभी, देखो सूक्ष्म अंत संधि में जब बोलो बोलो
सूक्ष्म अंत संधि में अति तीक्ष्ण क्या छेनी को अति निपुणता से जाए करे अति निपुण जन ने बंध को अति भिन्न करके आत्मा से आत्मा से जम गए वे ही विवेकी धन्य है जो भव जलधि से तर गए।
देखो मैं जो आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे सामने जो मेरी किताब रखो, मेरा लिखा समय सार रखो, तो कोई अपने समय सार का प्रचार करने के लिए नहीं कहता हूँ। अब मुझे ये बताने कलश का पद्यानुवाद, अब उसमें है ही नहीं तुम्हारी किताब में, तो मैं कैसे बताऊंगा। आप समझ मेरी आवश्यकता है वो है कैसा पुरानी रखी नहीं तो मैं कब मना कर दू नहीं रखी रहो 150 मंगा लो ये नहीं हो तो नहीं मंगा सकते कितने पैसा नहीं है आपके पास फ्री में मंगा लो और क्या कह सकता हूं क्यों पैसा नहीं है ये मुंबई वालों के पास पैसे नहीं है फिर किनके पास होंगे ऐसा कहते हैं कि जितना इनकम टैक्स देते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बंबई वालों का है ना फैक्ट नहीं और जितना बंबई वाले टैक्स देते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जैनियों का है ये सही है अब वो लोग क्या करें 150 सौ साल मंगाने के लिए पैसे नहीं कहते कहने कोई जगह नहीं अरे मारे भाई एक एक के पास 100-100 जोड़ जूते हैं उन्हें रखने की सबको जगह है कितनी साड़ियां कितने कपड़े कितने कितने हैं क्यों उनके लिए कुछ नहीं है इसके लिए जगह नहीं है नहीं मान सकते हैं अभी उस समय हो गया है अब बहुत मार्मिक प्रकरण है ये मुक्ति होने का वे कह रहे तुम प्रज्ञा सैनी से अलग करके लिखाना ले कि तुम अंत में अति भिन्न करके आत्मा से किनको बंध को और आत्मा में जम गई भिन्न करके माने कुछ ऐसा करना नहीं है सिर्फ जानना है भिन्न तो वे हैं ही मानना है और उसमें ही जमना है आत्मा में इतनी सी तो बात है हम तो यहां लाना चाहते हैं वे लौट के फिर उसी क्रियाकांड पे ले जाना चाहते हैं मैं आपको बोल रहा हूं ये जानता हूं सब टीवी पे जाने वाला है फिर भी कहता हूं कि मैं जहां तक जाता हूं ना बुलाते हैं लोग मुझे कहता हम हमें भी बताओ हमें भी समझाओ बात करें तो जाता हूं तो सब ये कहते हैं कि पंडित जी अंत में तो हमारे पास ही आना पड़ेगा ना दिगंबर बनना पड़ेगा ना नग्न दिगंबर उसके बिना तो मोक्ष नहीं होगा तो हम क्या कहें बोलो आप कहें वो जवाब दे दिया करें ये बात तो सच्ची है क्यों बिना नग्न दिगंबर दशा धारण किए बिना मुनि पद धारण किए मोक्ष हो जाएगा तो खुश हो जाते अरे कुछ लोग कहते आप हमें दृढ़लिंगी मानते अरे भैया हम कहां मानते हैं समझ जाए मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई गंभीरता से लगे क्यों गए क्यों गए क्यों हम कहते तुम्हारे पास क्यों आए तुमको ही सुनना है तुमको ही सुना ये गुरुदेव का इतना बढ़िया माल है क्यों और जिनने 24 घंटा अपने धर्म आत्मा के कल्याण के लिए दे रखा है और वे कोई सुनना चाहते हैं तो उन्हें नहीं सुना है क्यों क्या तकलीफ है इसमें यदि इसमें हम एक शब्द भी गुरुदेव की वाणी में पलट कर देते हो कि वहां गए तो दूसरा बोले और यहां गए तो दूसरा बोले तो आप कह सकते हो अमेरिका में गए कहीं गए तो हमारे कैसे सब जगह उपलब्ध है ख्याल नहीं ना देखो बात यही कही कि नहीं कही बात तो बात की है भाई साहब ऐसे ही सोच के गुरुदेव हमें नहीं सुनाते तो आज हमारी क्या दशा होती बोल आप सोचो जरा हम सब आज हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है ऐसी बात भी नहीं है मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा होने की जरूरत नहीं है लेकिन ये भीतरागी तत्व ज्ञान हमारे ख्याल में आ गया इस पंचम काल में ये क्या कम है और बाकी पुरुषार्थ तो हमें अपने अंदर से करना है और करके हमें अपना कल्याण करना है।